أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة ملك سے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تو موضوع سورت کا ہے دنیا کی زندگی امتحان ہے جامع ترمذی کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک کہ آپ الف لام میم السجدہ اور سورہ ملک تلاوت نہ فرما لیتے تو آپ کا ایک خاص تعلق تھا روزانہ رات کو آپ اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی پانچ آیات میں عظمت و اوصاف باری تعالیٰ. تبارک الذی بیدہ الملک, بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے کل حکومت. وہو علی کل شئین قدیر, اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو گویا تین صفات آ گئیں کہ بہت بابرکت ہے اللہ کی ذات اور وہی حقیقی بادشاہ ہے اس کائنات کا, اور نمبر تین کہ کل قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے, اور نمبر چار الذی خلق الموت والحیات, اور وہی اللہ جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو. لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے. وہو العزیز الغفور, اور وہ اللہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا, تو جیسے بات ہوئی کہ پوری سورت کا موضوع یہی ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے, اور اللہ نے یہ جو موت اور حیات کا سلسلہ رکھا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے, بلکہ اصل وجہ جو ہے وہ انسان کی آزمائش ہے. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب, اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اور جیسے کہ آج کل ماحول بھی ہے, آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے, کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. تو یہ امتحان وہی ہے, کردار بدلتے جا رہے ہیں, کل کچھ اور لوگ تھے آج میں اور آپ ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کون سا کردار ادا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں. اللہ کرے کہ ہم اسی کردار پر ہوں جو کردار جو ہے اللہ کو ماننے والوں کا ہے, مومنین کا ہے. آگے آیات آفاقی کے ساتھ جو ہے وہ دلیل دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی. فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا, وہی اللہ جس نے پیدا کر دیے آسمان اوپر نیچے, اور جیسے ہم کہہ چکے کہ سات آسمان ہیں اوپر نیچے تہ بتہ, ایک کے اوپر پھر دوسرا پھر تیسرا, اور حقیقت یہ کہ ابھی تک سائنس پہلے ہی آسمان کو نہیں پہچان سکی, تو ہمارے لیے ابھی یہ آیت جو ہے متشابہات میں سے, ہمیں اس کی صحیح حقیقت کا اندازہ نہیں کہ سات آسمانوں سے کیا مراد ہے. فرمایا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت, اور نہیں دیکھتے تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بھی فرق. فرجع البصر, بس دوبارہ ذرا ڈالو نگاہ. حل ترا من فطور, کیا تم دیکھتے ہو کوئی شگاف. تو یہ آسمان تو اس کی چھت جو ہے وہ ہمیں بالکل ہموار نظر آتی ہے, کہیں کوئی رخنا کہیں کوئی شگاف نظر نہیں آتا. فرمایا سمر جل بسرا کر رہا تھا, پھر نگاہ لوٹاؤ ذرا دوبارہ. ینقلب الیک البصر, اور لوٹ آئے گی تمہاری طرف تمہاری نگاہ. خاص وہ حسیر, ناکام اور تھکی ہوئی ہوگی, یعنی اس آسمانوں میں اگر کوئی کمی کمزوری کوتاہی شگاف ڈھونڈنے نکلو گے تو پھر یہ انجام ہونا ہے. آگے پھر جو ہے وہ آپ کے آیات آفاقی میں سے ایک اور دلیل دی جا رہی ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, اور ہم نے سجا دیا ہے آسمان دنیا کو چراغوں سے. تو یہ قرآن بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ جو پہلا آسمان ہے جسے ہم آسمان دنیا کہتے ہیں, اسے اللہ نے زینت دی ہے چاند سورج ستاروں سے. تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ چاند سورج ستارے یہ پہلے آسمان پر ہیں, پھر دوسرا آسمان اور تیسرا جو ہے وہ ہمارے علم ہی نہیں ہے اس کا معاملہ. تو فرمایا وجعلناها رجوما للشیاطین, اور ہم نے بنا دیا ان کو شیطان کو مار بگانے کی جگہ. تو بات ہوئی تھی کہ یہ فرشتوں کی چوکیاں ہیں. اکثر یہ جو ہم ستارے کہتے ہیں یہ بھی اصل میں بڑے بڑے سورج ہیں, اور جو ہے ایسٹرانومی میں جو ہے وہ یہ سورج ہی ہیں جو دور ہونے کی وجہ سے ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں, ہم انہیں ستارہ کہتے ہیں. تو یا تو ستارے یا یعنی کائنات میں یا تو سورج ہیں یا سورج کے گرد گردش کرتے ہوئے بڑے بڑے وہ پلانٹس ہیں. پلانٹس میں جلنے کا یا آگ کا معاملہ نہیں ہے, तो उसमें लाइट रिफ्लेक्ट करती है और वो हमें चमकते हुए नज़र आते हैं, वरना ज़्यादातर ये सूरज ही हैं जिन्हें हम सितारे कहते हैं। और गोया ये चौकियाँ हैं फरिश्तों की, और यहाँ से मलाए आला की हिफाजत की जाती है। और जब भी कोई सरकश जिन कोई टो लेने जाता है तो उस पर आग के गोले बरसाए जाते हैं जिन्हें शहाब साकिब कहते हैं। वह आतदना लहुम आज़ाब सईरा, और मैं के और हमने तैयार कर रखा है उन सरकश जिनों के लिए भड़कती आग को। वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, अब कुफर के होलनाक नतीजे बयान हो रहे हैं, और उनके लिए जिन्होंने इनकार किया अपने रब से, अज़ाब जहन्नम, उनके लिए है जहन्नम का अज़ाब, बिसल मसीर, और वो बहुत ही बुरी जगह है लौटने के अतबार से। जहन्नम के जो है तकरीबन चार औसाफ़ बयान हो रहे हैं। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा, जब वो डाले जाएंगे यानी नाफरमान गुनाहगार और ये कुफार जो है जहन्नम में, समिउ लहा शहीक़ा, तो वो सुनेंगे उसे ज़ोर से चिंघाड़ते हुए। वही तफूर, और दूसरी सिफत आ रही है, वो जोश मार रही होगी, जैसे आप देखें कि किसी को बड़ा ज़ोर से काबू किया हुआ, वो अपने आप को छुड़ा के झपटने के लिए बस बढ़ रहा हो, तो ये कुछ कैफियत जो है जहन्नम की होगी जहन्नमियों के लिए। एक तो देख कर चिंघाड़ेगी और फिर गोया उन पर झपटने के लिए जो है जोश मार रही होगी। और नंबर तीन, तकादु तमय्यज़ु मिन अल-ग़ैस, ऐसा मालूम होगा कि अभी फट पड़ेगी जोश की वजह से। और नंबर चार, कुल्लमा उल्किया फ़ीहा फ़ौज, और जब भी उसमें झोंका जाएगा कोई गुरोह, सअलहुम ख़ज़ानतुहा, तो पूछेंगे उससे जहन्नम के दारोगा। इसमें हमने पहले नाम पढ़ा था कि हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम ये फरिश्ते हैं दारोगा जो जहन्नम के। अलम यातिकुम नज़ीर, और वो दारोगा पूछेंगे क्या तुम्हारे पास नहीं आया कोई ख़बरदार करने वाला। इस पर इकरार जुर्म करेंगे जहन्नमी। कालू बला, वो कहेंगे क्यों नहीं, कद जाअना नज़ीर, यकीनन आए थे हमारे पास भी ख़बरदार करने वाले। लेकिन अब रसूलों को क्या जवाब उन्होंने दिया उसका जिक्र आ रहा है। फरमाया फकज़्ज़बना, और हमने उन्हें झुटलाया। नंबर एक, वकुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, और हमने कहा कि नहीं नाजिल किया अल्लाह ने कोई भी चीज़। और नंबर तीन, इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, और नहीं हो तुम मगर जो है वो सही गुमराही में। ये कौम का जवाब था अपने रसूलों के लिए, जो ख़बरदार करने आए थे उनको गोया इनकार किया गया, और जो अल्लाह की किताबें पेश की जा रही थी उन्हें रद्द किया गया और कहा कि भाई तुम तो गुमराही में हो माज़ल्लाह। अब नदामत का जिक्र है मुजरिमीन की। वकालू लव कुन्ना नस्माऊ आऊ नाकिल, और वो कहेंगे कि अगर हमने सुना होता और हमने अकल का इस्तेमाल किया होता, मा कुन्ना फी असहाबि सईर, तो हम ना होते जहन्नम वालों में से। फ़अतरफ़ू बिज़म्बिहिम, पस वो इकरार कर लेंगे अपने गुनाह का। फ़सुहक़ल लिअस्हाबि सईर, बस दूरी हो अहले जहन्नम के लिए, यानी अल्लाह की रहमत से वो फिर दूर हो जाएंगे। आगे फिर मोमिनीन का भी अंजाम है। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल्ग़ैब, यकीनन वो लोग जो डरते हैं अपने रब से बिन देखे, लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर, उनके लिए मग़फ़िरत है, बहुत अजीम अजर है, बहुत बड़ा अजर है, अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। आगे वसत इल्म बारी ताला का जिक्र। वासिरू कौमकुम, और तुम छुपाओ अपनी बात, अविज हरूबी, या जाहिर कर दो उसको, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक वो अल्लाह तो सीनों के भेदों से भी वाकिफ है। जो किसी दूसरे आदमी से आदमी ने नहीं कहा होता वो भी अल्लाह के इल्म है। अला यअलमु मन खलक, क्या भला वही नहीं जानेगा जिसने पैदा किया, उसे तो एक एक बात का पता है, उसे खूब अंदाज है तुम क्या कर रहे हो। वहुवल लतीफ़ुल ख़बीर, और वो अल्लाह बहुत बारीक बीन है और वो हर चीज़ से बाखबर है, बारीक से बारीक चीज़ भी उसे पता है। इसी तरह आगे फिर आयात आफाकी आ रहे हैं तौहीद की दलील के तौर पर। हुवल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ध ज़लूला, और वही अल्लाह है जिसने बना दिया तुम्हारे लिए ज़मीन को नरम। फ़म्शू फ़ी मनाकिबिहा, ताकि तुम चलो उसके अतराफ़ में। वकुलू मिन रिज़्क़िही, और खाओ उस अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से। वइलैहि नुशूर, और उसी अल्लाह की तरफ दोबारा इकट्ठा किया जाना है। बयान हो रहा है कि अज़ाब कौन देता है। अअमिनतुम मन फ़िस्समा, क्या तुम अमन में हो, क्या तुम निडर हो गए उससे जो आसमान में। अयख़सिफ़ा बिकुमुल अर्ध, कि वो धंसा दे तुम्हें ज़मीन में। फ فَإِذَا هِيَ تَمُوتُ بس وہ یک یک لرزنے لگے. تو اللہ سے, اللہ کے عذاب سے, اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ کے لیے یہ عین ممکن ہے کہ وہ گناہ گاروں کو زمین میں دھسا دے. اسی طرح اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ ہو. دوسری مثال دی جا رہی ہے, ام امنتم من فی السماء, کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمانوں میں ہے, ایوسل علیکم حاسبا, کہ وہ بھیج دے تم پر پتھروں کی بارش, فستعلمون کیف نذیر, پھر تم جان لو گے کہ کیسا تھا ہمارا ڈرانا. ولقد کذب الذین من قبلہم, اور جھٹلا چکے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے, فکیف کان نکیر, بس کیسے تھی ہماری ناراضگی. جو بھی اللہ کو ناراض کرتا ہے تو وہ پھر امن میں نہیں رہتا, امن چھین دیا جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں رسوائی, ذلت اور عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. اسی طرح دلیل عقلی دی جا رہی ہے پرندوں سے. تو پہلے جو ہے وہ زمین سے دلیل دی گئی تھی توحید کی, اور اب پرندوں سے. اولم یروا الی الطیر, کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف, فوقہم, اپنے اوپر, صافات و یقبضن, جو پر کھولتے ہیں اور پھر سکوڑتے ہیں, ما یمسکہن الا الرحمن, کون تھامے ہوئے انہیں سوائے رحمان کے, انہ بکل شیء بصیر, اور بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. تو یہ پرندے بھی کیسے معلق ہوتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان اور اڑ رہے ہیں, اور یہ کس کی مرضی سے ہے اور کون, کس نے انہیں یہ صلاحیت دی ہے, تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. اسی طرح آ رہا ہے مدد کون کرتا ہے, امن حاضر لذی ہوا جند لکم, بھلا کون ایسا ہے جو تمہارا لشکر ہو, ینصرکم من دون الرحمن, جو تمہاری مدد کر سکے سوائے رحمان کے, یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی لا سکتے ہو لشکر. فرمایا ان الکافرون الا فی غرور, اور کافر نہیں ہے مگر دھوکے میں پڑے ہوئے, کوئی اللہ کا مقابل نہیں ہو سکتا, اللہ کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. آگے بیان ہو رہا ہے رزق کون دیتا ہے, امن حاضر لذی یرزقکم, کہ بھلا کون ہے ایسا جو تمہیں رزق دے, ان امسک رزقہ, اگر وہ اللہ تم سے اپنے رزق کو روک لے, بل لجو فی عطوی و نفور, بلکہ وہ اڑے بیٹھے اپنی سرکشی میں اور نفرت میں. اسی طرح ہدایت پر کون ہے, فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدا, بس کیا وہ شخص جو چلتا ہے وہ اندھے منہ, یعنی منہ کے بل, وہ زیادہ گویا ہدایت پر ہے, امن یمشی سویا علی صراط مستقیم, یا وہ شخص جو اپنے دونوں پیروں پر بالکل سیدھا چلتا ہے سیدھے راستے پر. تو منہ کے بل چلنے سے مراد کیا ہے, کہ زندگی جو ہے بطن کے تقاضوں میں گزارنا, کھانا پینا جنسی تقاضے, بس یہی مقصد ہے زندگی, گویا اوندھے منہ کھسک رہا ہے وہ زمین پر, اور ایک آدمی جو ہے وہ پورے دونوں پیروں پر کھڑا ہوا ہے, وہ دیکھ رہا ہے ہدایت کا راستہ کیا ہے, کون سا راستہ اللہ کی رضا کا ہے, کہاں اللہ کی ناراضگی ہے. تو کون زیادہ ہدایت پر ہو, جس کی زندگی صرف یہ بطن کے تقاضے پورے کرنے کے لیے, یا وہ جو واقعی انسان کی طرح کھڑا ہو کر اور باوقار طریقے سے زندگی گزارا. اسی طرح دلیل عقلی انفسی آ رہی ہے تیسری دلیل, قل هو الذی انشأکم, اے نبی کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا, وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اور پھر اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل, قلیلا ما تشکرون لیکن بہت تھوڑا ہی ہے جو تم شکر کرتے ہو. تو اکثر نعمتیں اللہ کی ہیں کہ ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے, لیکن معاملہ وہی ہے کہ اس پر شکر بہت کم ہے. صوفیہ کہتے ہیں ہر سانس پر اللہ کے دو شکر واجب ہو جاتے ہیں, ایک سانس کے اندر لے جانے کا شکر اور ایک سانس کے باہر نکالنے کا شکر. تو آدمی ذرا دیکھے کہ وہ کتنا شکر کر رہا ہے. آگے بیان قیامت ہے, اصل ٹھکانے کا ذکر کیا جا رہا ہے, الذی زرعکم فی الارض, وہ اللہ جس نے پھیلا دیا تم کو زمین میں, وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور اسی کی طرف جو ہے وہ جمع کیا جانا ہے, سب کو اللہ اکٹھا فرمائے گا. اب ان کا ایک اعتراض, اس کا جواب, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ, اب وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ, کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو کہا جا رہا ہے اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم سچے ہو, قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ, اے نبی آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے, وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ, اور بے شک میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں. कैफियत क्या होगी बवक्त अजाब, अभी तो सवाल कर रहे हैं लेकिन उन्हें तस्वीर दिखाई जा रही है, क़यामत का दिन वो होगा जब तुम्हारी ये हालत होगी। फलम्मा राहुल जुल्फा, और जब वो देखेंगे उसे यानी क़यामत को बिल्कुल करीब, सी अत वजूहुल लज़ीना कफरू, तो बिगड़ जाएंगी सूरतें उन लोगों की जिन्होंने कुफर किया। वकीला हाज़ल लज़ी कुंतुम बिही तद्दाउन, उनसे कहा जाएगा यही है जिसका तुम दुनिया में जो है जल्दी मांगा करते थे। आगे सूरत के अख्तिताम पर तीन कुल जो है वो आ रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गोया ऐलान कराया जा रहा है। गोया पहली बात ये कही जा रही है कि कुफार को जवाब दीजिए कि तुम अपनी फिक्र करो, मेरे साथ क्या होता है, मुसलमानों की क्या साथ होता है वो अलहदा बात है, अपनी तो फिक्र करो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। कुल ए नबी आप कह दीजिए, अरे आई तुम, भला जरा देखो तो, इन अहलकनी अल्लाह व मन माया, अगर अल्लाह हलाक कर दे मुझे उन लोगों को जो मेरे साथ हैं, और रहमना या अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए, फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम, तो कौन है जो पनाह देगा काफरों को दर्दनाक अजाब से। भाई अपनी फिक्र करो, तुमने रसूल को भी रद्द कर दिया और जो है मुसलमानों को भी रद्द कर दिया, कुरान को भी नहीं मानते, तो फिर अगर जब क़यामत आएगी तो तुम किसकी पनाह में होगे। इसी तरह दावत ईमान दी जा रही है, कुल हुवर रहमान व आमन्ना भी, ए नबी कह दीजिए कि वही रहमान है जिस पर हम ईमान लाएँ, वालही तवक्कलना, और उसी पर हमने तवक्कुल किया है, फसतअलमून, पसंद करीब तुम जान लोगे, मन हुआ फी ज़लालिम मुबीन, कि कौन है सरी गुमराही में। और आखिरी कुल, और इसमें गोया दलील अकली दी जा रही है कि अल्लाह ताला की कुदरत पर तुम्हारी ज़िंदगी कायम है, अल्लाह ताला ये पानी की नेमत छीन ले तो फिर कहाँ ज़िंदा रह सकोगे। फरमाया कुल अराई तो, ए नबी कह दीजिए ज़रा देखो तो, इन असबहा माउकुम गौरा, अगर हो जाए तो वहाँ पानी खुश, ज़मीन चूस ले पानी, ये मीठा पानी रहे ही नहीं, फमन यातीकुम बिमाइन माईन, तो कौन है ऐसा जो तुम्हें ला दे ये पानी। तो ज़ाहिर है अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है और पानी पर हम सब की ज़िंदगियों का इनासार है, तो गोया ये हमें मुख्तलिफ दलाइल दिए गए हैं कि इतने रहम करने वाले, इतने नेमतें देने वाले अल्लाह की नाफरमानी से बचो, उसे राज़ी करने की फ़िक्र करो। अगली सूरत सूरह कलम है, मौजू ईमान पे रसालत है, और ये दूसरी वही थी तरतीब नज़ूली के अरबाज से। सबसे पहली वही तो गार हिरा में सूरह अलक की इब्तदाई 5 आयात थी, उसके बाद दूसरी वही ये सूरह कलम की इब्तदाई 10 आयात कहलाती हैं, और इसमें इल्म की फजीलत का बयान हो रहा है। जामे तिर्मिज़ी की एक रिवायत भी है क्योंकि बिल्कुल शुरू में नून और कलम से जो है सूरत का आगाज़ किया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम पैदा किया और फिर उससे कहा लिखो, चुनांचे कलम ने वो सब कुछ लिख दिया जो अब तक होने वाला था, जो अबद तक होने वाला था, तो यानी सब कुछ पहले से अल्लाह के इल्म में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इब्तदाई 10 आयात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र और इस्तकामत की तलकीन की जा रही है। फरमाया नून, यह हरूफ मुकत्तआत में से हैं, असल माने अल्लाह को मालूम है। एक राय यह है कि ये दवात को कहते हैं जिसमें कलम को डुबो कर फिर लिखा जाता है स्याही। वल कलम ही वमा यस्तुरून, और कसम है कलम की और उसकी जो कुछ वो लिखते हैं। मा अंत बिनअमति रब्बिका बिमजनून, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के फजल से कोई मजनून नहीं है, दीवाने नहीं हैं। वइन्ना लका लअजरन गैर ममनून, और यकीनन आपके लिए तो ऐसा अजर है जो कभी रुकने वाला नहीं। वइन्नका लअला खुलुक नाज़ीम, और बेशक ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अखलाक के नहायत आला दर्जे पर फाइल हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुस्न अखलाक की तकमील फरमाई गई, और जब अल्लाह ताला ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहे हैं तो इसके बाद तो कोई बात रहती नहीं। यानी अल्लाह ताला जो खालिक है वो कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर। अब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, उन्होंने पूछा क्या कुरान नहीं पढ़ा, खुलुकुल कुरान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कुरान थे, गोया आप चलता फिरता कुरान थे। और वैसे तो अरबी का मुहावरा है कि अल्फज़लु शहीदा बिही आदा, फजीलत यह है कि जब जो दुश्मन है वो तारीफ करें, तो अल्लाह ताला ने तारीफ़ फरमाई, सहाबा ने तारीफ़ की और सभी करते हैं, लेकिन बात यह है कि दुश्मनों ने भी तारीफ़ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ऐसी है। तैमन रॉय बंगाली जो है वो हिंदू मेंबर था इंटरनेशनल कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, उसने कहा कि तारीख इंसानी का अजीम तरीन इनकलाब है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरपा फरमाया। एच जी वेल्स कंसाइज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लिखने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शदीद दुश्मन, लेकिन ये कहने पर मजबूर हुआ कि इंसानी हमदर्दी मुसावात और भाईचारे पर वास तो पहले भी बहुत किए गए, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले नस्लों पर माशरा कायम कर दिखाया। मॉन्टगोमरी वोल्ट आप से इस्लाम का मुखालिफ, दो किताबें मोहम्मद एट मक्का मोहम्मद एट मदीना लिखी और दोनों में आप से इस्लाम की तारीफें करने पर मजबूर पाया अपने आप को उसने। इसी तरह रामकृष्णा जो हिंदू ही था और हिंदू ही रहा, लेकिन उसने कहा कि मोहम्मद एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद एक सिपहसालार, मोहम्मद एक ताजर, मोहम्मद एक हुक्मरान, मोहम्मद एक खतीब, मोहम्मद एक मुस्लिह, मोहम्मद एक यतीमों के सरपरस्त, गुलामों के महाफिज, औरतों के हकूक के अलमबरदार और मोहम्मद एक काजी। ज़िंदगी के इन तमाम गोशों में उनका यकसा पुरअज़मत किरदार रहा है। तो ये तो आप से इस्लाम के शदीद तरीन दुश्मन भी आपकी तारीफ जो है वो कर कर गए। फरमाया फसा तो बसरूना वही बसरून, पसंद करीब आप भी देख लेंगे और वो भी देख लेंगे। बे अये को मुल मफतून, कि उनमें से कौन था जिस पर जनून सवार था। इन न रब्बा का हुआ आलम, और बेशक आपका रबी खूब जानता है। बेमंजल्ला सभी रही, उसे भी जो भटक गया सीधे रास्ते से। वह हुआ आलम बिल मोहतदीन, और अल्लाह खूब जानने वाला है सीधे रास्ते पर चलने वालों को भी। फला तो तैल मुकद्दबीन, बस आप कहा ना मानिए झुटलाने वालों का। वद्दू लौ तुदहनू फयुदहनून, वो तो चाहते हैं कि आप नरमी करें तो वो भी नरम पड़ जाएं, आप उनके बुतों की मुखालफत में ज़रा नरमी करें तो वो भी आपकी मुखालफत में नरमी कर देंगे। तो फरमाया वला तो ते, और बस आप कहा ना मानिए। कुल्ला हल्ला फिर महीन, हर कसम खाने और बेकदर इंसान का। यहाँ मुफसरीन कहते हैं वलीद बिन मुगीरा की तस्वीर खींची गई है, लेकिन ये ईमान से महरूम और हक का इनकार करने वाला किरदार है जो यहाँ बयान हो रहा है। तो उसकी तकरीबन 10 जो है बुराइयाँ यहाँ बयान हो रही हैं। नंबर 1 के कसम खाने वाला, और नंबर 2 महीन, यानी इसका आम तर्जुमा होता है जलील, यानी बेकदर, जिसकी कोई कदर ही ना हो। हम्माज़ मशाइम बिन अमीन, यानी जो ताने देने वाला और चुगली खाने वाला, ये सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं जब आखिरत का इनकार किया जाता है। मन्ना इल्लिल खैर, नेकी से रोकने वाला। मुअतदि नासी, हद से बढ़ने वाला गुनाहगार। उतल्लिम बादा ज़ालिका जनीन, और फिर बड़ा उजक और इन बातों के बाद बद असल भी, जिसकी कोई जो है असल जो है आप कहें नस्बत भी नहीं थी। इसे अक्सर मुफसरीन वलदुज़्ज़िना जो है वो उसे तशबीह देते हैं। अनकाना जा मालियों व बनी, और इसलिए सारी अकड़ उसमें ये थी कि उसे दिया गया था, बनाया गया था माल वाला और बेटों वाला। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जब पढ़ी जाती हैं उस पर हमारी आयतें। क़ाला असातीरुल अव्वलीन, तो क्या था पिछलों की कहानियाँ किस्से हैं। सनसिमुहू अलल खुरतुम, तो हम दाग लगाएंगे उसकी सूंड पर। खुरतुम जो है सूंड को कहते हैं, नाक के लिए इस्तेमाल होता है, और ग़ज़वे बदर में जो है इसकी नाक पर फिर तलवार का ज़ख़म आया था। फरमाया इन्ना बलौना हूँ, और बेशक हमने उन्हें आजमाया है। कमा बलौना असहाबल जन्ना, जैसा कि हमने आजमाया था एक बाग वालों को। आगे बाग वालों का किस्सा है, और इस हवाले से मुख्तसर वाक़िया ये है कि एक शख्स बड़ा नेक था और बहुत सखी था, गरीबों मोहताज मिस्कीनों की मदद करता था। बाग था उसका बड़ा शानदार, और जब भी फल उतरते थे वो महरूम की मदद करता। उसका इंतकाल हो गया, बाद में बेटों ने जो है बुखल का इरादा किया। चुनांचे ये पूरा वाक़ आ रहा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बाग जो है ये हबशा का बाग है, हबशा में कहीं था। फरमाया कि इस अक़समू, जबकि उन्होंने कसम खा ली। ला यसरिमुन्नहा मुस्बहीन, कि हम ज़रूर तोड़ लेंगे उस बाग का फल सुबह होते ही। अब ये बच्चे हैं, और वो जो है बाप का इंतकाल हो गया, और बाद में ये आपस में प्लान करें कि सुबह ही सुबह जाके फल तोड़ लेंगे। वला यस्तस्नून, और उन्होंने इसका कोई इस्तस्ना भी नहीं कहा, यानी इंशाअल्लाह भी नहीं कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो हम कल ये काम कर लेंगे। फताफा अलैहा ताइफुम मिन रब्बिक, बस फिर गया उनके बाद पाई फिरने वाला आपके रब की तरफ से, यानी आफत आ गई। वहुम नाइमून, और वो सो ही रहे थे। फअसबहत कस्सरी, बस वो बाग हो गया जैसे कटी हुई खेती। अब बाग वालों की कैफियत बयान हो रही है। फता नादौ मुसबहीन, बस वो लगे पुकारने सुबह होते ही, चलो भाई उठो जल्दी करो, जल्दी जल्दी पहुंचे बाग में, अब बाग का फल तोड़ लें इससे पहले के मोहताज जो है वो और मिस्कीन जो है आ जाए मांगने। अलगदु वाला हसिको, और कहने लगे कि चलो सुबह ही सुबह चलो अपने बाग की तरफ। इनकुन तुम सारिमीन, अगर तुम फल तोड़ना ही चाहते हो। फंतला को वहम या तखाफत हो, बस वो चले और फिर चुपके से आपस में कहते जा रहे थे, अल्लाह यदखुलन न हल याऊ, कि आज हरगिज़ दाखिल नहीं होना चाहिए। अलैकुम मिस्कीन, तुम पर कोई भी मिस्किन। व गदौ अला हर्दिल क़ादिरीन, और वो चाहते थे कि सुबह ही जा पहुँचे ताकि बड़े कुदरत रखते हुए वो सारा फल जो है जल्दी से तोड़ लें। फलम्मा राउहा, बस जब उन्होंने देखा अपना उजड़ा हुआ बाग, कालू इन्ना लज़ालून, तो पहला इम्प्रेशन तो ये हुआ, वो कहने लगे हम भटक गए, हमारा बाग तो बड़ा ज़बरदस्त था, ये तो उजड़ा हुआ सब जो है तबाह बर्बाद हुआ, ये कहाँ हमारा हो सकता है। फिर एहसास जुर्म हुआ और कहने लगे बल नहनु महरूमून, बल्कि हम तो बदनसीब हैं। काला औसत हो, फिर उनका जो औसत भाई था, एक मुराद ये ली जाती है कि भाइयों में जो ज़रा समझदार था, अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून, क्या मैं उसने कहा क्या मैंने ना कहा था कि तुमसे कि यूं तुम तस्बीह कि क्यों अल्लाह की तस्बीह नहीं करते। कालू सुबहाना रब्बिना, इस पर उन भाइयों ने इकरार जुर्म किया, कहने लगे पाक है हमारा रब, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हम ही ज़ालिम थे। फ़अक़बला बाज़ुहुम अला बास, बस वो मुतवज्जो एक दूसरे की तरफ, यतलाबमून, और आपस में मलामत करने लगे। कालू या वैलना, और कहने लगे हाय अफसोस, इन्ना कुन्ना तुआगीन, और यकीनन हम ही हद से बढ़े हुए थे। असा रब्बुना, साथ ही अल्लाह की तरफ उन्होंने रुजू किया अपनी इस गलत सोच गलत इदारे इरादे पर, अल्लाह ताला से तौबा की और कहने लगे, उनकी उम्मीद थी कि असा रब्बुना, कि कुछ बईद नहीं कि हमारा रब, अयुब्दिलना खैरम मिन्हा, कि बदल के दे दे हमें इससे बेहतर बाग। इन्ना इला रब्बिना राग़िबून, बेशक हम अपने रब की तरफ रुजू करते हैं। कज़ालिकल अज़ाब, अल्लाह ताला फरमा रहे यूं ही हुआ करता है अज़ाब। हमारे यहाँ बड़े बड़े सैलाब आ जाते हैं, जलजले आ जाते हैं, हम कहते हैं अज़ाब थोड़ी है, नेचुरल चीज़ है। अल्लाह ताला कह रहे हैं यूं ही होता है अज़ाब, जब तुम नाफरमानी करते हो फिर तकलीफ़ आती है, बर्बादी आती है, तुम्हारी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, तुम्हारे कारखाने उजड़ जाते हैं, तुम्हारे खेत बर्बाद हो जाते हैं, तो यही होता है अज़ाब। और फरमाया वला अज़ाबुल आखिरत अकबर, और जो आखरत का अज़ाब है वो कहीं बढ़कर है। लौ कानू यालमून, काश के वो जानते। तो अल्लाह ताला हमें भी तौबा की तौफीक अता फरमाए। मुफस्सिर